अभी से आगे जो हिस्सा शुरू हो रहा है तो माजी के मुसलमानों के नाम पे, लेकिन आपको हाल के मुसलमानों का भी इसमें अक्स दिखेगा। एक टॉपिक लिखना चाहें, गिरोहबंदी, फिरकेबाजी, या चंद बातें कहकर आपको आगे ले चलती हूँ कि अभी तक हम देख रहे हैं कि अल्लाह ने माजी के मुसलमानों को बड़ी खूबसूरत शरीयत दी थी। उसमें भी 10 कमेंडमेंट्स मौजूद थे, अहकाम अशरा थे, सब कुछ था। और अल्लाह का दीन हर एक को उसका हक जरूर देता है, ये नहीं कहता कि हक किसी का छोड़ के तुम लोगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को अपनी मर्जी का मालिक समझा, दीन का कुछ हिस्सा लिया, कुछ छोड़ दिया। जो दीनदार थे उन्होंने सच्ची किताब दीन की छुपा दी कि हमसे ही मसले पूछो ताकि हमारी भी तुम पर कोई इज्जत और रोबरे। नुकसान क्या हुआ? एक तरह तो लोग ख्वाहिशात में पड़ गए। दूसरा नुकसान क्या होता है? जब ये असल किताब जिस वक्त आपके हाथ में, इसको मोहब्बत से छू कर कहिए, ये किताब जब आम लोगों से दूर होती है तो फिर इसके बाद फिरकेबाजी पैदा होती है। फिरके वारियत का सबसे बड़ा सबब यह है कि लोग अल्लाह और उसके रसूल की किताब से ज्यादा इंसानों की लिखी हुई और उलमा की और मुफ्तियों और मुज्तहदीन की लिखी हुई किताबों को ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, हर एक दीन का काम करता है, हर एक, हम किसी पे कोई शक नहीं करने का हक रखते हैं, हमें तो अभी कुछ आता भी नहीं है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की किताब इस बात का हक रखती है कि हर शख्स इसको पढ़े। एक शोशा फैला दिया जाता है, कहते हैं ये किताब हर एक के पढ़ने वाली नहीं है। और औरतें, तौबा करो, जब औरतों ने दी किताब पकड़ी, कितने ही वानों में कोहराम मच गया, लो जी अब औरतें कुरान पढ़ेंगी, देखो जी इनको क्या हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान की कोयत नाजिल होती थी, आप उसको मनोमन याद करके अपने करीब के सहाबा को सुनाते थे, याद कर लेते थे। हर सहाबी हाफिज था, घर जाते अपनी अजवाज मुतहरात के साथ उन आयतों को शेयर करते। दिन का एक खास हिस्सा आपने मुकर्रर किया हुआ था जिसमें सिर्फ खवातीन को तालीम दी जाती थी। अल्लाह के नबी में तो ये कोई बांट नहीं थी कि इस किताब को पढ़ने से पहले ये और वो इल्म हासिल करो, पहले 4 दफा वुजू करो, सर पे अच्छी तरह से दुपट्टा लो, पूरे अदब और एहतराम से बैठो और फिर उसके बाद हमारी बात सुन लो, लेकिन कुरान नहीं छू सकते। याद रखिए, आज इस किताब की जाहरी तज़ीम तो बहुत है माशाल्लाह, लेकिन इसको पकड़ना, इसको पढ़ना, लोग कहते हैं इसमें बेअदबी हो जाती है। आज हमने जाहरी तौर पे कुरान को ऊपर रखने और उसकी तौकीर के बहुत सारे इख्तमाम किए माशाल्लाह, लेकिन आप देखिए कपड़ा जब कभी कभार पहनते हैं, घंटा पहने कहीं गए, शादी में पहन के आ गए, उसकी तो बड़ी इज्जत करते हैं, राइट? कीमती भी बहुत है, वो ठीक भी रहेगा। लेकिन एक जोड़ा जब रोज सुबह उठ के पहनते हैं और घर का काम काज करते हैं और उसके बाद अगले दिन धो के तीसरे दिन फिर वही पहन लेते हैं, करते हैं ना। अब आप बताइए कि नया जोड़ा जो एक दफा पहन के छोड़ दिया, वो जाहरी बात है कि उसका एहतमाम प्रोटोकॉल आप ज्यादा रखेंगे, लेकिन जो रोज पहनने वाला कपड़ा उसकी इतनी केयर तो नहीं करेंगे ना। बस इसको समझिए, ये मिसाल शायद मेरी और आपकी हिदायत का जरिया बन जाए कि कुरान के साथ कुछ लोगों का एहतमाम फैंसी कपड़ों वाला है। बड़े एहतमाम से खोलो, बड़े प्रीत से खोलो, खास मौके पे, और ये करो, और फिर वो जाहरी बात है जिंदगी के हर रंग में आता ही नहीं है। इस बारे के एंड पे हम पढ़ेंगे, फिर सिबगत अल्लाह का रंग ही नहीं आता। दूसरी सूरत है कि ये कुरान आपका डे टू डे लाइफ में चल पड़ता है, आपकी जिंदगी पूरी इसके साथ है, आप खाते पीते पढ़ते सुनते हैं, तो फिर वो प्रोटोकॉल तो आप नहीं कर सकते। तो याद रखिए, जो बुनियादी मकसद है कुरान का, वो हिदायत लेना है। आप में से किसी के पास कोई ऐसी चीज है जो डेली यूज की है, आप कहते नहीं ये खराब हो जाएगी यूज करने से, इसको ऊपर सजा दो, बस दूर से कभी कभी देख लूंगी, बेतुकी बात है। तो ये कुरान थिंग्स टू डू थी, इस पे अमल करो। लोगों ने जब इसको छोड़ा तो इस क्या नुकसान हुआ? आइए पढ़ते हैं आयत नंबर 91 से आगे। वैसा कील अलहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु, जब इनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया इस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं, देखिए इसको अपने लफ्जों में कहें कि जब इनसे कहा जाता है आओ कुरान पढ़ो, तो क्या कहते हैं? हम तो सिर्फ उस चीज पर ईमान लाते हैं जो हमारे यानी बनी इसराइल में उतरी, इस दायरे के बाहर जो कुछ आए इसे मानने से वो इनकार करते हैं। तासुब की झलक है। आज ये जुमला कई लोग बोलते हैं, कहते हैं हम फलां आलिम की बुक के अलावा किसी की नहीं पढ़ते, हम फलां मसलक की किताब के सिवा किसी की नहीं पढ़ते। देखिए कुरान सबका है, दुनिया में कोई एक ऐसा मुसलमान फिरका है जो इस कुरान का इनकार करे? इनकार करेगा तो वो मुसलमान ही नहीं रहेगा। लेकिन कुछ किताबों को ये सोचकर पकड़ना कि ये हमारी पसंद के किसी आलिम ने लिखी है, बड़ी अच्छी बात है, आम लोग पढ़ें उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये कहना कि इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना, इसके सिवा जो है वो नाहक बात है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, देखिए तासुब कितना है, अल्लाह की किताब को पीछे करके कहते हैं हम सिर्फ अपनी चीजों को मानेंगे, हालांकि वो हक है और इस तालीम की तस्दीक और तायीद कर रहे हैं जो इनके पास पहले से मौजूद थी। अच्छा इनसे कहो, अगर तुम इस तालीम पर ही ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे पास आई थी, तो इससे पहले अल्लाह के इन पैगंबरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते रहे? ये भी एक अजीब बात है। बाज़ लोग दूसरों की बात सिर्फ इसलिए नहीं सुनते, हम दूसरे मसलक की बात नहीं सुनते, अपने मसलक की भी कोई नहीं सुनते। दूसरे के कहने पे नहीं जाते कहीं, तो अपनों के कहने पे भी नहीं आते। कई लोगों ने देखिए एक ऐसा ढकोसला छोड़ा होता है कि मसलन आप उन्हें के नमाज पढ़े, नहीं मैं इधर नहीं मैं उधर पढ़ूंगा, मतलब ये कि ये मेरे मसलक की मस्जिद नहीं, ठीक है गो हेड नो प्रॉब्लम। तो दूसरे की छोड़ के अपनी में भी नहीं जाते, ख्वाहिश अंदर, सुस्ती अंदर। इसलिए अल्लाह सुबहान तआला यहाँ सारे पोल खोल रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं असल में खुद बेअमल हैं। वरना देखिए दुनिया का कोई मसलक कोई फिरका गलत बात की तालीम नहीं देता। लोग अपनी ख्वाहिशों से और अपनी लाइल्मी की वजह से चीज़ों को ना माने, वो उनकी मर्जी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अच्छा इनसे कहो अगर तुम इस तालीम पर ही ईमान रखते हो जो तुम्हारे पास आई थी, तो इससे पहले अल्लाह के इन पैगंबरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते रहे? तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आए, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि इसके पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना बैठे। फिर जरा इस मीसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत तुमको हम दे रहे हैं इनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगा कर सुनो। तुम्हारे असलाफ ने कहा हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं। ये जुमला हाईलाइट कर लीजिए, समेना व असैना, आयत 93 के अंदर है। याद रखिए ये मेरा आपका मुहासबे का नुकता है। क्या कुरान को सुनकर ये कहती हूँ कि सुनूंगी तो सही मानूंगी नहीं, पढ़ूंगी तो सही लेकिन अमल नहीं करूंगी, या ये कहती हूँ कि सुनूंगी तो मानूंगी? और इनकी बातिल परस्ती का हाल ये था कि दिलों में इनके बछड़ा ही बसा हुआ था। जरा सा इस पे बात करते हैं, पीछे भी बात हुई थी बछड़े की। बनी इसराइल मिस्र में रहते हुए गाय की मोहब्बत का शिकार हो चुके थे। ना चाहते हुए भी याद रखिए कुफर के तरीकों का मुसलमानों पे असर आता है, रंग ढंग आता है, क्योंकि कुफर के तरीके बड़े रंग रूप वाले होते हैं, कहीं रंग फेंकते हैं और कहीं खुशबुएं जाती हैं। इनके दिलों में जो बछड़ा था ना वो तो उधर था, आज भी हर एक के दिल में कोई बछड़ा है। किसी का बछड़ा नींद है, उसको सोना अच्छा लगता है, फजर निकल जाती है। किसी का सुस्ती है, वो सुस्त है इसलिए दीन के मौके निकल जाते हैं। कुछ का बछड़ा शॉपिंग है, वो कहते शॉपिंग नहीं छोड़ सकती। कुछ का बछड़ा घंटों फोन पे बेकार चैटिंग करना है। आप और मैं अपना बछड़ा पहचाने, आप कहेंगे अब ये बछड़ा कहाँ से आता है, किधर बंधा हुआ है? ये दिलों में बंधे होते हैं। हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह का हुक्म सुनने के बावजूद उठने से रोक ले वो आपका बछड़ा है। आज जाके उसको ज़िबा करने की कोशिश कीजिए। ये 30 पारे इंशाल्लाह ताला मेरे आपके बहुत सारे बछड़े ज़िबा करेंगे। फिर सिर्फ हम ईद उल अधा के ऊपर ही कुर्बानियाँ नहीं करेंगे, हर रोज़ ही कुछ ना कुछ करेंगे। और चौथे पारे की पहली आयत में तो हम इंशाल्लाह एक दूसरे से शेयर भी करेंगे कि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी मनपसंद चीज़ों को कुर्बान करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है, ये ऐसी बुरी हरकत का तुमको हुक्म दे रहा है। अच्छा दो खराबियाँ हमने देख ली, अब तीसरी की तरफ इशारा है। जब अल्लाह की किताब से अमल हटता है ना तो फिर एक और चीज़ बहुत बड़ी ज़िंदगी में आती है, और वो क्या है? लंबी उम्र की ख्वाहिश, और जीने को दिल चाहता है। क्योंकि दुनिया में जो दिल लगाया तो दुनिया में जिएंगे, तो फिर दुनिया की ख्वाहिशात को पूरी करेंगे। तो अगली आयत देखिए, आयत 94, कुल इन कानत लकुम अद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दुनिन नास, इनसे कहो अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए खालिस है, ये तुम्हारे लिए ही मखसूस है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो। यकीन जानो ये कभी इसकी तमन्ना नहीं करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों से जो कुछ कमा कर उन्होंने वहां भेजा इसका तकाजा यही है कि ये वहां जाने की तमन्ना न करें। अल्लाह जालिमों के हाल से खूब वाकिफ है। यहाँ आप देखिए लंबी उम्र की ख्वाहिश की बात हुई, जिसने इस दुनिया में ज़्यादा जमा किया होता है उसका दिल इधर लगता है, और जिसने आखरत के लिए ज़्यादा भेजा होता है उसका दिल उधर लगता है। आप सोचिए कि आप इस शहर में 10 साल से रह रहे थे, सडन नोटिस मिल जाए, और अल्लाह ताला हम सबको फितनों से महफूज रखें, कि विद इन 1 वीक आपने इस मुल्क को छोड़ना है, किसको मुश्किल लगेगा? जिसके पाँव इधर ज़्यादा पसारे हुए हैं, जिसने यहाँ ज्यादा ही अपना सर रसूख रखा, जो अपनी जिंदगी के गुजारे के लिए रहता था वो कहेगा इस ओके ठीक है 1 हफ्ता बहुत है समेट के चलते हैं। बिल्कुल मौत के वक्त यही दो कैफियत होती हैं, उस शख्स को दुनिया से जाना बहुत मुश्किल लगता है जिसका सब कुछ इस दुनिया में इन्वेस्टेड है। वो इधर ही सब कुछ रख के बैठा है, वो कहता है हाय मेरी जायदादें, हाय मेरे घर, हाय मेरे कपड़े, हाय मेरे जेवरात, ये है वो है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिसने साथ ही साथ अपनी चीज़ों को आगे ट्रांसफर किया, वो कहेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, जस्ट फॉर चेंज वी कैन गो एनी वेयर, वी कैन मूव टू एनी वेयर। अपने ऊपर पूछिए मुहासबा, अगर मुझे अल्लाह के लिए कहीं निकलना पड़े तो निकल सकती हूँ। आज अगर मेरे ऊपर फर्ज कर दिया जाए तबूक की तरह कि निकल पड़ो अपने घरों से, तो क्या वाइजा की ललकुम उनफिरू फी सबीलिल्लाह हिसा कल तुम्हें ललर्त वाली कैफियत होगी, पांव बोझल होंगे। आज कितने लोग हैं जो दीन के लिए निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या चीजें पांव पकड़ती हैं, ये दुनिया, ये दुनिया, इसको कम कीजिए। जिसको दूर तक जाना होता है ना, वो अपना सफर कम रखता है। आपके ट्रैवलिंग के दौरान जितने ट्रांजिट्स होते हैं ना, आप उतना हैंड कैरी हल्का रखते हैं। क्यों? हर स्टेशन पे उतरेगा और आपके साथ साथ स्टेशन पे घूमेगा और फिर अगले जहाज में जाएगा और उतनी सिक्योरिटी से गुजरेगा। अल्लाह ताला मना नहीं करते, इस्तेमाल कीजिए, जमा ना कीजिए। दिल में ना रखें इस दुनिया की चीजों को, हाथों में रखिए। जो इस्तेमाल करते हैं कीजिए, आप नहीं कर रहे कोई दूसरा कर ले। अब अगली आयत जो हमारे आज के हिस्से की आयत तदब्बुर है, आइए थोड़ा सा इस पे गौर करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वला तजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लव युअम्मरु अल्फ सना व मा हुवा बिमुज़हज़िहि मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे, हत्ता कि इस मामले में मुशरिकों से भी बड़े हुए। इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि किसी तरह 1,000 बरस जिए, बल्कि क्या कहते हैं, जियो तुम 1,000 साल और हर साल के हो दिन 1,000। यही दुआएं देते हैं ना, क्या करना ऐसी लंबी जिंदगी को जो मकसद से गाफिल कर दे। क्या जी के कोई गया दुनिया से, करके क्या गया? आप देखिए, मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मिसाल दी थी साद बिन मास की, सिर्फ 36 या 37 साल की उम्र तक जिए, 30 साल की उम्र में मुसलमान हुए। सिर्फ 6 साल में क्या कह गए और क्या कर गए कि अल्लाह के नबी की खुशखबरियां जुबान की पा गए कि साद की मौत पर अर्श झूम उठा, कांप उठा। क्या था क्वालिटी लाइफ? थोड़ा सा इसमें हमें टाइम मैनेजमेंट पे बात करने की जरूरत है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं और आप कितना जीते हैं, ये बड़ी बात है कि जिंदगी से क्या लेकर गए। आगे आप पढ़ेंगे सूरत नहल में हजरत इब्राहिम के बारे में आता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इब्राहिम एक उम्मत थे। मुराद क्या है कि जितना काम एक उम्मत कर जाती है उतना काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर गए। मैंने आपने आज तक क्या किया? थोड़ा सा इस पे गौर व फिक्र करते हैं, ये हमारा मुहासबा है, ये हमारी अपनी सोचें। खोलते चाहे शीट, अगर खोलना चाहे हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि देखिए इस वक्त मेरे आपके लिए जो सोच की बात है खुशी की, वो क्या है? खुशी की बात यह कि अभी हम जिंदा हैं। आप अपनी किसी ऐसी दोस्त, किसी ऐसी बहन को याद करें जो आज आपके साथ नहीं है, एक नमाज पढ़ सकती हैं, एक यूरो सदके में दे सकती हैं, पुराने पाक का वो एक लफ्ज पढ़ सकती हैं, नहीं पढ़ सकती ना। आपके मेरे लिए खुशखबरी है, एक नहीं 10 यूरो खर्च कर दें अल्लाह के रास्ते में, एक नहीं हम 5 नमाजें एक दिन में पढ़ लें, जितने मर्जी नफिल पढ़ें, ये जिंदगी क्वालिटी की गुजारें। यही हमारा आज की इस शीट में आपको मैसेज है। आप देखिए कि अगर शीट को आप खोलें, ये आप में से जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इंशाल्लाह आपको ईमेल में जाती हैं, और अच्छे स्टूडेंट्स रोज़ की रोज़ शीट जाके प्रिंट करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, वो आप लिखेंगे जाके, होमवर्क के तौर पे जो लिखी हुई है उसको सेव करेंगे। एंड ऑफ द दौरे कुरान इंशाल्लाह आपके पास एक बिग फोल्डर रेडी होगा, और इसके साथ हम काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल भी रखते हैं ताकि आपकी ये बातें जो जल्दी में आप सुनते हैं, नोट नहीं कर सकते, वो रिटर्न फॉर्म में आपके पास हो। तो इस आयत को बुनियाद बनाते हुए पहली बात यह है कि लंबी उम्र बात नहीं है, काम क्या किया, क्वालिटी टाइम। आज की हदीस देखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए हंजला लम्हात और साआत की हिफाजत करो, लम्हे की हिफाजत कीजिए। घंटा मिनटों से मिलके बनता है, मिनट सेकंड से मिलके बनते हैं। आप जरा सा बैठकर एक घंटे को ब्रेकअप करके देखिए, बल्कि आपको होमवर्क दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, एक साल में कितने दिन है लिखिए, बस ऐसे हिंट दीजिए, पूरा घर जाके करिएगा। एक साल के दिन 365, महीने 12, ठीक है, घंटे करिए जरा 12 को हर दिन के 365 से ज़रब देंगे, कितने मिनट कितने सेकंड? आपको हैरत होगी, हम इस दुनिया में अरबों खरबों सेकंड्स जिंदगी गुजार के जाते हैं। और अगर आप और मैं ये देखना चाहें ना कि हम इनमें क्या कर सकते हैं, तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। घड़ी देखिए, आप लोग अपने पास जो भी घड़ी है, या आप लोग इधर से सेट करें, 1 मिनट तक मैं खामोश रहूंगी। और आपने क्या पढ़ना है? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, दिल में पढ़िए। तो जरा अपनी उंगलियों पे गिनिएगा, मैं भी पढ़ूंगी, आप भी पढ़ें, ठीक है? गिनते हैं जरा कितनी दफा पढ़ते हैं। शुरू करो। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, 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 ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अब देखिए मिनट खत्म होने पे नहीं आ रहा। कितनी दफा पढ़ा आपने? 16 दफा। आपने? 20? 21? आपने? 35? आपने? मैंने 33 बार पढ़ा, और मैंने बीच में कोई पूरी ऐसे स्वीट से नहीं पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अब आप देखिए पढ़ने का तरीका बताते, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला, नहीं, अब देखिए कैसे पढ़े, पढ़ने का तरीका, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। और अगर तर्जमे पे गौर करें ना, नहीं कोई ताकत और नहीं कोई कुव्वत मगर अल्लाह की, यानी जो नेकी करूंगी वो अल्लाह ने की। हदीस में आता है कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला एक बार पढ़ने से सबसे सबसे कम जो फायदा होता है कि अल्लाह उसके दिल से गम दूर कर देता। इसके बहुत फजाइल है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त हमने कॉन्शियसली शऊर के साथ 1 मिनट में, मैंने 33 दफा पढ़ा है तो आप 35 दफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत आराम से पढ़ती हूँ। मुझे बताइए हम कितने मिनट जाया करते हैं। तो अपने लम्हों की हिफाजत कीजिए, जिससे पैसों को गिन गिन के जमा करते हैं ना, एक एक कॉइन एक एक सिक्का लेकर जाते हैं। तो आपके लिए मेरे लिए ये एक्टिविटी है कि हमने अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। फिर अगर आप दूसरे ब्लॉक में देखिए तो लिखा हुआ है आपके सामने कि वक्त जाया करने वाले काम, यानी टाइम वेस्टर्स, आपके मेरे क्या है, बहुत सारे हैं। आज जिस टाइम वेस्टर पे मैंने कल तक फोकस करना है, फिर इंशाल्लाह ऐसा ऐसा वो मेरी आदत बनेगी। और वो क्या है कि इंटरनेट पर गैर जरूरी वक्त जाया नहीं करना। ये कुर्बानी कौन कौन दे सकता है? बिलाल, आप कहेंगे हम नहीं बोलते आपसे, हमारे तो आपने बेकार कर दिया। और यकीन करें, अगर आज का पूरा दिन जब बाकी है कल आने तक आप और मैं इस पर काम करेंगे ना, तो आज माशाल्लाह कई लोगों के घर की सफाई बहुत अच्छी होगी, कई दिन के जो कपड़े धुलने धुले पड़े हैं वो इस्त्री भी हो जाएंगे। मैं अक्सर सोचती हूँ कि आज की औरतों को टाइम क्यों नहीं मिलता, उसकी बड़ी वजह यही है, चैटिंग करते हैं। अच्छा, गैर जरूरी काम क्या है? मतलब बुटीक से कपड़े ढूंढना गैर जरूरी के जरूरी? और जरा चेक करें कि क्या नई चीज आई है, खबरें पढ़ना, इसको भी देखिए। इंशाल्लाह इसी सीरीज में एक दिन आपको अहम और गैर अहम के ऊपर भी बात करेंगे। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आज की जो दुआ है हमारे इस हिस्से में, जो पीछे वाले में कल गुजरी थी लेकिन हमने उसको आज ऐड किया ताकि आपको एक एक दुआ याद हो, तो आज का आपका मेरा टारगेट क्या है, ये दुआ याद करेंगे, आउज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। पीछे हम गाय का वाक्या पढ़ चुके हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे कहा कि गाय को ज़िबह कर दो तो उन्होंने बहुत ही माइंड किया, तो जहालत से पनाह मांगी। हकीकत ये कि ये दुआ मांगने की जरूरत है, आज जहालत इतनी आम है, इंसान इल्म से दूर है, जाहिल रहना पसंद करता है, तो इंशाल्लाह ये दुआ मुझे आपको कुरान पाक के भी करीब लेकर आएगी। फिर इसी तरह से हम हर दिन किसी एक शख्सियत के बारे में ये बात पढ़ेंगे कि भाई उनका अमल क्या था वक्त के साथ। तो आज की जो हमारे पास शख्सियत हैं या रोल मॉडल हैं, काबिले तकलीद शख्स हैं, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। एक दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मेरे औकात में बरकत दे और मुझे सही काम करने की तौफीक अता फरमा। आप देखिए कि ये चीज़ आप और मैं भी मांगे, क्योंकि बरकत अल्लाह से मिलती है। जब बहुत सारे काम होते हैं ना, वाकई कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ नहीं होने वाला, तो उस वक्त फिर एकदम दिल चाहता है कि दुआ मांगे। और आप ये आजमा के देखिए, अचानक किसी ने फोन कर दिया, मैं आ रहा हूँ, अब आप क्या करें, क्या पकाऊं, क्या नहीं करूं। दुआ करें, अल्लाह मेरे औकात में बरकत दे दे। इंशाल्लाह इससे आपको फील होगा कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए ये चीजें सहूलत के साथ होंगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगी से हर बेकार चीज को निकाल दे और कारामद चीजों को ले आए। और कितनी खूबसूरत बात है ना आयत के एंड पे कि वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। इस पे नजर रखिएगा कि अल्लाह को मेरे हर अमल की खबर है, हर चीज मेरे साथ हो रही है। बहरहाल अब यहां से आगे जो हिस्सा है ना, यहां थोड़ा सा मैं इसका भी आपको खुलासा दे के शुरू करवाऊं तो फिर ज्यादा फायदा होगा। जब दिल में बुग़्ज़ होता है ना, तासुब होता है, तो इंसान ये नहीं देखता कि हमें बात क्या मिल रही है, वो कहते हैं दे कौन रहा है। बात समझ गए? अकलमंद लोग कहते हैं कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मौजूद जो भी बनी इसराइली थे उनको दावत दी कि देखो ये कुरान अल्लाह का पैगाम है, आओ इसको सीखो। अब किताब की दावत थी, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह को मानते थे, किताबों को मानते थे, लेकिन दिल में शक क्या था कि ये नबी सल्लम हमारे मसलक से क्यों नहीं है, बनी इस्माइल से क्यों आ गए। तो एक दिन अल्लाह के नबी के पास आकर कहने लगे, ये बताइए कि ये वही या ये कुरान आपके पास कौन लाता है? तो कहा, मेरे पास जिब्राइल लाते हैं, क्योंकि हर नबी के पास वही जो थी जिब्राइल लेकर आए। तो उस पे अब उन्होंने क्या कहा, कहेंगे ओ नो नो नो, हम नहीं ले सकते ये कुरान। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जिब्राइल से तो हमारी पुरानी दुश्मनी है ना, बेवकूफी की बात। भाई आपकी जिब्राइल से क्यों दुश्मनी है? कहेंगे नहीं नहीं ये बड़ी मुश्किल तौरात लेकर आए थे, ये बड़े मुश्किल हुक्म लेकर आते थे, भाई जिब्राइल का क्या कसूर है? देखिए कभी आप किसी फेडेक्स या DHL वाले नुमाइंदे से नाराज होते हैं कि तुम इतना बड़ा बिल क्यों बिजली का लेकर आए हो, चलो भाग जाओ हम तुमसे नहीं बोलते। आप कम बिजली इस्तेमाल करें, बिजली का बिल कम आएगा। हाँ फिर इसी तरह से कहते थे नहीं जिब्राइल ने जी हमारी उम्मतों पे बड़े अजाब लेकर आया है। यानी ऐसे ही तासुब पेश कर दिया। आप जरा देखिएगा इसका जवाब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत 97 में, कुल मन कान अदुव्वल लिजिब्रील फइन्नहु नज़ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। इनसे कहो जो जिब्राइल से अदावत यानी दुश्मनी रखता हो, इसे मालूम हो जाना चाहिए कि जिब्राइल ने अल्लाह ही के इज़्ज़त से ये कुरान तुम्हारे कल्ब पर नाजिल किया है, जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक और तायीद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी की बिशारत बनकर आया। अगर जिब्राइल से इनकी अदावत का सबब यही है तो कह दो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूल और जिब्राइल और मीकाईल के दुश्मन है, अल्लाह इन काफिरों का दुश्मन है। ये आयत मेरे आपसे एक बहुत बड़ा तकाजा करती है, कभी किसी अल्लाह वाले को बुरा ना कहे, कभी किसी दीनदार का मजाक ना करें। आपको क्या पता कि अल्लाह ताला की निगाहों में उसका क्या मुकाम है? हदीस में आता है अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है, जिसने मेरे किसी दोस्त से बुगज रखा मैं उससे बुगज पे आ जाऊंगा। तो मेरा आपका ये मुकाम नहीं है कि हम दीन वालों का मजाक करें, उलमाए दीन की नियतों पे शक करें, किसी के ऊपर कुछ है कुछ नहीं। आपको जिसकी बात समझ आती है आप ले लीजिए, और कोई दूसरा किसी दूसरे की सुनता है। मतलब आप आज मेरे साथ सुन रहे हैं इधर, तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है कल आ जाइए। लेकिन अगर आपकी कोई दोस्त किसी हो सकता है दूसरी जगह जाती हूँ, तो मुझे नहीं पता यहाँ कहीं और कुछ दौरे कुरान होता है कि नहीं, मिसाल है वो जाती हैं, जाने दीजिए। कभी उनके उस्ताद का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि हमारा दीन शख्सियात में नहीं है, अमल देख लीजिए किसकी बात के बाद तब्दीली ज्यादा आ रही है, किसकी बात सुन के बात इजी समझ आती है उसकी ले लीजिए, बहसों में ना पड़े। इसमें आपका भी फायदा होगा और दूसरों का भी फायदा होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद अनज़लना इलैका आयातिन बैनात, हमने आपकी तरफ ऐसी आयात नाजिल की जो साफ साफ हक का इजहार करने वाली हैं, और इनकी पैरवी से सिर्फ वही लोग इनकार करते हैं जो फासिक हैं। क्या हमेशा ऐसा नहीं होता रहा कि जब उन्होंने कोई अहद किया तो इनमें से एक ना एक गिरोह ने उसे जरूर ही बालाए ताक रख दिया? यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों की अक्सरियत अहद पूरे नहीं करती, बल्कि इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते। और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल इस किताब की तस्दीक और तायीद करता हुआ आया जो इनके यहाँ पहले से मौजूद थी, तो इन अहले किताब में से एक गिरोह ने किताबुल्लाह को इस तरह पसे पुश डाल दिया गोया कि वो जानते ही नहीं। ज़रा से इस दर्द को महसूस कीजिएगा। ये आज उम्मत में भी आम है, और वो क्या, किताब अल्लाही वरा ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यालमून। किताबे हिदायत को पसे पुश डालना। पसे पुश डालना क्या होता है? लीस्ट प्रायोरिटी देना कि आज उम्मत मुस्लिमा की ज़िंदगी में ये किताब आपको सामने दिखती है या पीछे दिखती है। ज़ाहरी ताज़ीम तो बहुत है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह कायम रखे, लेकिन अमली तौर पे अहकाम टूटते, इस किताब की बातों को मानते नहीं, कुछ नहीं करते, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड। भाई ये किताब में लिखा होगा लिखा, मुझे क्या लगे, आज के दौर में नहीं रह सकते, कल के दौर के ये तकाजे थे। अल्लाह ताला कहते हैं जब कोई कौम अल्लाह की किताब को इतना इग्नोर करे तो उसका नुकसान क्या होता है? वत्तबाउ मा तसलु शयातीन वाला मुल्की सुलेमान, और लगे इन चीजों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफर नहीं किया, कुफर के मुर्तकिब तो वो शैतान थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े इस चीज के जो बाबुल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई, हालांकि वो फरिश्ते जब किसी को इसकी तालीम देते तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बे यानी वॉन कर देते, आगाह कर दिया करते थे कि देखो हम महज एक आजमाइश हैं, तुम कुफर में मुबतला ना हो। फिर भी ये लोग इनसे वो चीज सीखते थे जिससे शोहर और बीवी में जुदाई डाल दे। जाहिर था कि इसने इलाही के बगैर वो इसके जरिए से किसी को जरर नहीं पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज सीखते जो खुद इनके लिए नफा बख्श नहीं बल्कि नुकसानदेह थी। और इन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज का खरीदार बना इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी मता थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश इन्हें मालूम होता अगर वो ईमान और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ इसका जो बदला मिलता वो इनके लिए ज्यादा बेहतर था। काश इन्हें खबर होती। इन आयत में आपने जादू का तस्करा सुना। याद रखिए कि अल्लाह की किताब को पीछे डालने का ही नतीजा क्या होता है कि इंसान पे कुछ चीज़ों के असरात आते हैं। आज ये चीज़ बहुत कॉमन है, लोग नफसियाती बीमार हैं। पहले मुझे याद है जब हम बचपन में सुनते थे एक लफ्ज़ हिस्टीरिया, फलां को हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं, या किसी पे जिन आ गया। आज के दौर के जो इश्यूज़ हैं अनबिलीवेबल। आज यंग बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जिस मारूफ और फैशनेबल बीमारी का शिकार है उसको डिप्रेशन कहते हैं। सुना होगा, मैं एक मुल्क में थी और वहाँ की रिपोर्ट्स मेरे से शेयर की जा रही थी। छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन है, स्कूलों में तीन तीन चार चार साल के बच्चों को डिप्रेशन है, और माँ बाप उनके पेरेंट्स को बुलाते, मीटिंग्स करते, काउंसलिंग्स होती, साइकाटिस्टों को दिखाते। तो मैंने पूछा कि छोटे बच्चे को किस बात का टेंशन है, डिप्रेशन है? मेरा रबड़ किसी ने ले लिया, मेरी पेंसिल गुम गई, क्या मेरी टॉफी किसी ने छीन ली। बिलीव मी, यंग लड़कियां, यंग बच्चे डिप्रेशन में। बच्ची थी मैंने ऐसी यंग टीनेजर, सुनाइए क्या, कहती बहुत मसले हैं, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, खैरियत? आपकी उम्र में तो हमने यह सुना है कि परेशानी का नाम ही नहीं पास होता। सच्ची बताइए, पाकिस्तान में 12-14 साल की लड़कियों का सुनकर क्या जहन में आता था? बांकड़ी ऐसे ही लल्लड़ दुशीजा, हंसती जा रही हैं, खाती जा रही हैं, बोलती जा रही हैं, चिड़िया कहते थे, चिड़िया द चंबा है, बेफिक्रापन था। आज यंग लड़कियों के चेहरों पे मुस्कुराहट ही नहीं है, क्यों? कहती लोन बहुत है ना, कर्ज में बजे हुए, कर्ज की क्या जरूरत पड़ी। फिर वो लंबी कहानी सुनाई जो आप में से बहुत सारों को आती होगी पहले से ही। याद रखिए डिप्रेशन की इंतहाई कैफियत को जादू कहते हैं। बहुत सारे लोग लफ्ज जादू के साथ बहुत खौफजदा हो जाते हैं। बेकार लोग, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल से दूर रखने वाले, तहारत का एहतमाम ना करने वाले, 5 नमाजों की पाबंदी ना करने वाले, जिक्र अजकार से दूर, और इसके बरक्स शैतानी कामों में मशगूल, यानी जिनके कानों में हर वक्त शैतानी आवाजें जाएं, वो चीजें जाएं कि जिसकी वजह से दिल में निफाक पैदा होता है, तो ऐसे लोगों पर जादू बहुत जल्दी होता है। जादू है, इसमें झूठ नहीं है, लेकिन हर चीज जादू नहीं होती। जादू जो है बेसिकली आपके अपने इनसाइड के वीक होने का नाम है। जब आप अंदर से बहुत कमजोर हो जाते हैं ना, तो फिर आप छोटी सी बात से मुतासिर होते हैं। मतलब मैं अगर आपको कोई लफ्ज़ बोलूँ तो आप अच्छा बोलूंगी तो आपको अच्छा लगेगा, मैं कहती हूँ आप बड़ी क्यूट हैं तो आप खुश होंगी, और अगर खुदा ना से मैं किसी से आप बड़ी होशियार हैं तो बुरा लगेगा ना, और अगर इस जुमले को बार बार कह दूँ तो आपको गुस्सा आएगा। तो बेसिकली जादू के जरिए से लोग दूसरे के इनसाइड को वीक कर देते हैं। इलाज क्या है? पहले तो इसका इलाज यह है कि आप होने ही ना दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लंदन में आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मुझे लग रहा है या तकरीबन इसी अरसे में जादू और उसके बारे में जो मुख्तलिफ चीज़ें थी उस पर सेमिनार किया था वेबसाइट पे, और मेरा गुमान है ऐप के ऊपर भी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर किसी को इस बारे में कोई हल्की सी भी गाइडलाइन चाहिए तो आप उसको सुनिए। बहुत लंबा भी नहीं है, छोटी छोटी 20-25 मिनट की फाइल्स हैं जिसमें नजरे बद से बात शुरू होके एक पूरी बुक पढ़ी थी हमने अब्दुल्ला बिन बाज रहमहुल्ला की, जो आज के दौर के अपनी जिंदगी के आखिर तक यानी सऊदी अरब की दारुल उफ्ता कमेटी के बड़े रहे, नाबीना थे और अल्लाह ने उन पे बहुत रहमतें की थी। तो उनकी एक बुक को हमने बेस बनाया था, आप उसको सुनिए और खुद से दूसरों का इलाज ना करें, बेहतर है कि आप उनको बताएं। ये जरा तवील है, आप कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, तो एक छोटी सी सीरीज अभी हमने लास्ट मेरा ख्याल 3-4 माह पहले नॉर्वे से की थी, छोटा सा बुकलेट है दम ज़रिया इलाज, उसमें कई दम और वजीफे हैं जो शरई मसनून है, और उसमें सबसे ज्यादा तवील टॉपिक जो है वो जादू का है, और इसकी ऑडियोज आपको ऐप के अंदर से और वेबसाइट से मिलेगी। जिस सिस्टर को भी मसला हो आप उनको वो सुनाएं, उसमें वो दुआएं भी सारी पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के नाम की बरकत से अल्लाह ताला उसको महफूज कर देगा। इसके बरक्स जादू खुद करना सीखना कराना इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बाद अगले हिस्से में कुछ अदब और आदाब सिखाए जा रहे हैं, दीन की महफिलों का क्या रंग होना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें जो थी वो कितनी खुली होती थी कि उसमें मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिम भी आ जाते थे, कभी कभी वो बीच में आकर कुछ महफिल में खलल डाल देते थे, उसी का तذکرہ किया जा रहा है। आयत नंबर 104, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू रुईना वकूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, रुईना ना कहा करो बल्कि उन्जुर ना कहो और तवज्जो से बात को सुनो, ये काफिर तो अजाब अलीम के मुस्तहिक हैं। ये लोग जिन्होंने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया, ख्वाह अहले किताब में से हों या मुशरिक, हर किस ये पसंद नहीं करते। क्या पसंद नहीं करते? कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। इससे आपको मुझे कुछ मैनर्स मिलते हैं, और वो क्या है, कभी दीन की महफिलों पे ये ठप्पा नहीं लगाना चाहिए कि फलां आ सकता है और फलां नहीं आ सकता। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक दीन की महफिल वो होती है जिसमें लोग ये नाम लिख देते हैं कि जी यहाँ फलां मसलक का आ सकता है फलां नहीं आ सकता, और देखिए सबसे बड़ी दीन की महफिलें तो मस्जिदों में सजती हैं ना, अल्लाह के हुक्म से हर जुमे को खुतबा होता है, क्लासेस होती हैं, आम दर्स होते हैं, लेकिन जब मस्जिद के दरवाजे पे आप लिख देते हैं ये मस्जिद फलां मसलक की है, फलां अहले फलां फिरका, दूसरे मसलक वाले नहीं आएंगे, वो कहेंगे ये हमारी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना खुला था कि गैरों को भी आने देते थे। फिर इसी तरह से दूसरी एक पाबंदी जो दीन के नाम पे सजी हुई महफिलों में लगती है वो कि एक खास गेटअप। अब ये बड़ी अहम बात है, अगर कभी आपको इससे थोड़ा सा वास्ता पड़ा हो, बस अब हमारे तसव्वुर में एक चीज आ चुकी है कि दीन की महफिल गंदी घुटी हुई, लोग बिल्कुल बेजार दिख रहे हैं, मुंह भी नहीं धोया हुआ, और इस तरीके के हाल हुलिये में कि उनको देख के अल्लाह वाला लग रहा है, वो पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं, यानी हमारे दीन के साथ एक रहबानियत का तसव्वुर दे दिया जाता है। अब होता क्या है, कुछ लोग हैं, मिसाल है आप देखिए एक सिस्टर है उस तक दीन की बात ही नहीं अभी पहुंची, वो दुपट्टा भी नहीं लेती बेचारी, उसके बाजू भी पूरे नहीं है, आपसे कहती इधर आइएगा दौरे कुरान हो रहा है, कही नहीं मेरा हाल हुलिया अच्छा नहीं, हाय मैं ऐसे नहीं जा सकती, खौफ सता होगी ना, आप जब दरवाजे पे आए तो हम उधर रोक लें, पहले आप अपने कपड़े चेक कराएं, आपका तो हुलिया ठीक नहीं है, आप तो है ही नहीं वो नहीं, मुझे बताइए क्या वो इस हॉल में आएंगी। याद रखिए हर बंदे को इस्लाम मुख्तलिफ तरीके से सजता है, जैसे किसी नॉन मुस्लिम का पढ़ा कि वो मुसलमान कब हुए, जब उन्होंने पुलाव खाया, किसी सफर में थे वहां मुस्लिम्स के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने पुलाव पेश किया, तो उन्होंने कहा जो कौम खाना इतना मजे का पकाती है उनका दीन कितना अच्छा होगा, रिसर्च की मुसलमान हो गए। इसी तरह अमेरिका में तो जो स्कॉलर्स हैं वो बड़ा जॉली अंदाज में कहते हैं कि हम तो बिरयानी खाने आए थे हमें इस्लाम मिल गया, क्योंकि वहां हर मस्जिद में बिरयानी बटती है। आप देखिए कि आप क्यों वो पाबंदियां लगाते हैं जो अल्लाह ने नहीं लगाई, आप खवातीन में बैठे हैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर अल्लाह की नेमत को तहदीस नेमत के तौर पर, दिखावा नहीं शोहरत नहीं कोई सेल्फ प्रेजिंग नहीं है, अल्लाह की नेमत है, आपके घर में 10 जोड़े हैं, अगर आप उनमें से एक जोड़ा निकाल कर साफ सुथरा पहन के आते हैं आप इज्जत देते हैं कि बेइज्जती करते हैं? किधर पहन के जाते हैं हम जिसको इज्जत देते हैं, जिसकी नजर में दीन जितना है मगर उसकी जिंदगी के ए टू जी दीन पे इस्तेमाल होगी, और जो दूसरे हैं वो देख लीजिए कि फिर वो दीन के नाम पे सफेद दुपट्टा, चाहे चिकन के बड़े बड़े सुराख बने हुए, चिकन की शलवारें, और या फिर एक काला बुर्का। याद रखिए, हर बंदे को रुख्सत देनी चाहिए, किसी को भी दीन की महफिल से रोकने का आपको मुझे हक नहीं है। बाहर जिस हाल में कोई फिर रहा है उनकी मर्जी है, आपके पास कोई आए उसको इज्जत से लें, और कभी बिलफर्ज किसी महफिल में ऐसी सिस्टर आ ही जाए तो सारे घूर घूर के उनको देखते हैं, ये कहाँ से आ गई। नहीं, अल्लाह ताला चाहता है कि इस दीन को हर बंदे तक पहुंचाया जाए। आपकी फितरत है, आप देखिए हम अपने घरों में एसी कैदी हैं कि नहीं, और आप इस दीन की महफिल में कोई एसी लगा दें, ये क्यों लगा है? ये इस मदरसे में एसी की क्या जरूरत थी? ये यहूदियों के जंट हो गए, इनको पैसे कौन देता है? भाई आप सारे एसी ये बंद भी कर दें तो क्या हम सारे देखो देंगे? ये गलत तरीकेकार है। तो जब हमारे घर इतने खूबसूरत हैं तो दीन के इदारे क्यों खूबसूरत ना हो? हम घरों में नरम कुर्सियों पर बैठते हैं तो अगर दीन वाले नरम कुर्सियां रख दें तो कोई बुरी बात है? तो याद रखिए, ये जाहरी हाल हुलिया से तकवा का कोई ताल्लुक नहीं। बाद लोग ऊपर से मस्कीन लगते हैं लेकिन अंदर से इतने सख्त दिल होते हैं, किसी से नरम बात ही नहीं कर सकते। तो ये आयतें सारी हमें इसी तरह से सिखाती हैं। और अगली बात जो है इसमें आती है कि हसद की। दिलों में हसद होता है ना तो फिर इंसान अच्छी जगह की चीज को अच्छा भी नहीं महसूस करता। उन्होंने इसका किया लेकिन अल्लाह के नबी ने सहाबा को मना कर दिया। और आखिरी बात इसमें करके आगे चलते हैं कि खराबी दूसरे गिरोह की तरफ से आई थी। नबी सल्लम का मजाक करते थे, रायना को राईना कहने लग गए, ओ मरे चरवाहे। अल्लाह ने उनको कुछ नहीं कहा, सहाबा को कह दिया, या अय्युल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना। इसमें मेरे आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, अपनी इसलाह करें। जिस पत्थर से आपकी गाड़ी टकराई, आप पत्थर को छोड़ दें, अपनी गाड़ी को साइड पे कर लें। टकराव से जिंदगी में हमेशा नुकसान होगा। किसी इंसान के साथ आपका वास्ता पड़ा, टकराव है, लड़ाई होती है, बहस होती है, मत जिंदगी जाया करें, आप उसको उधर रहने दें, आप थोड़ा सा बाईपास कर लें। इसके बाद यहूद का एक और ख्याल था कि ये इस कुरान में आयतें बार बार बदल के क्यों आ रही हैं, हमारी शरीयत में कुछ और था अब क्यों बदल रहा है? तो ये अगली आयतों में थोड़ा सा उसका खुलासा है। आयत नंबर 106, मन अनसख मिन आयतनाती बिखैर मिनहा। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, इसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं या कम से कम वैसी ही, क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है? क्या तुम्हें खबर नहीं कि जमीन और आसमान की फरमारवाई अल्लाह ही के लिए, और इनके सिवा कोई तुम्हारी खबरगिरी करने वाला और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं? फिर क्या तुम अपने रसूल से इस किस्म के सवाल और मुतालबे करना चाहते हो जैसे उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं? हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफर की रविश से बदल लिया वो राह रास्त से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ ले जाएं। देखिए इस आयत पे गौर कीजिए, अल्लाह की बात मानेंगे दिन ब दिन ईमान बढ़ेगा, अदरवाइज दूसरी तरफ खतरा कितना ज्यादा है। अगरचे हक इन पर जाहिर हो चुका मगर अपने नफ्स के हसद की बिना पर तुम्हारे लिए इनकी ये ख्वाहिश है, इसके जवाब में तुम अफवो दरगुजर से काम लो। ये करना है आज के मुसलमानों ने, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। यहाँ तक कि अल्लाह ताला खुद ही अपना फैसला नाफिज कर दे, मुतमईन रहो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। नमाज कायम करो और ज़कात दो, तुम अपनी आखबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे अल्लाह के हाँ इसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नज़र में। देखिए कितने खूबसूरत मोड़ पे हमारा रुख पूरा हो रहा है। फाफू वस्फहू, क्या सारी बात का खुलासा निकला कि दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जितनी मर्जी बातें करें, अगर मुसलमान अपने दीन पर अमल करें, अपने दीन पर एतमाद करें, कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो और दूसरों के साथ नरम बात करें लेकिन अपने असूलों पे जमे रहें, अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद करेगा। तो फाफू वस्फहू, और साथ ही साथ आप देखिए, वमा तुकद्दिमु लिअन्फुसिकुम, आप और मैं इस दुनिया में बैठकर अपनी आखरत के लिए कुछ ना कुछ आगे भेजने की कोशिशों में, ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दे।